आज है नवंबर महीने की 2 तारीख दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी।
दुनिया भर के बम पटाके चले, उससे पोल्यूशन कितना हुआ आपकी बात।
जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये समय बहुत खराब है,
आंखों में जलन सा होने लगता है।
विश्व व्यापार संगठन के फैसले से भारत को क्यों लगा झटका।
ये अगर सब्सिडीज हटा दिए गए तो भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा कि वो एक्सटर्नल मार्केट की तरफ देखे, कि वो निर्यात करें।
कर्नाटक में टीपू सुल्तान के नाम पर एक बार फिर हुआ विवाद।
एक बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से दरखास्त की है कि टीपू सुल्तान का नाम स्कूल और कॉलेज के टेक्स्ट बुक से निकाल देना चाहिए।
सब विस्तार से, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सिंधुवासिनी से सुनिए। भारत की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। सभी स्कूल 5 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और स्कूली बच्चों को लाखों मास्क बांटे गए हैं। दिवाली के बाद दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुँच गई है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है और अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका और चीन में एक ट्रेड डील होने वाली है। व्हाइट हाउस से मिली जानकारी के मुताबिक ये डील आखिरी चरण में पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रमुख सहयोगियों में से एक लैरी कुडलो ने कहा कि दोनों देशों ने इस सिलसिले में बेहतरीन प्रगति की है, लेकिन कुछ और काम होना अभी बाकी है। डील अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़े हैं। पिछली बार हम जहां थे, इस बार उससे बहुत आगे हैं, इसलिए मैं आशावादी होकर सोच रहा हूं। ये थे डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगी लैरी कुडलो के शब्द। पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील का जिक्र करते हुए कहा था कि ये एक बेहद महत्वपूर्ण डील है। उन्होंने कहा था कि इसमें बौद्धिक संपदा और कृषि जैसे क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक में हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर राजधानी बगदाद के बीचों बीच इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इराक की जनता प्रधानमंत्री अब्दुल अब्दुल मेहदी के इस्तीफे की मांग कर रही है। लोग इतनी बड़ी संख्या में जुटे हैं कि शुक्रवार की नमाज के बाद बगदाद का तहरीर चौक प्रदर्शनकारियों से भर गया था। इस बीच प्रमुख शिया धर्मगुरु अली सिस्तानी भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतर आए हैं। अक्टूबर से शुरू हुए इन सरकार विरोधी प्रदर्शनों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों घायल हुए हैं। बगदाद में आए इन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव लाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हम सरकार बदलने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी हैं। हमारे पास इस झंडे के अलावा कुछ नहीं है और वो हम पर आंसू गैस बरसा रहे हैं। हमने क्या गुनाह किया है? हम पुल पर खड़े थे जब उन्होंने मेरे साथी के पैर पर मारा और मेरे चेहरे पर। हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ इराक के झंडे थे। ये थे बगदाद से एक प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आलोचनाओं के बीच अपने ब्रेग्जिट डील का बचाव करना जारी रखा है। उन्होंने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन संदेहों को खारिज किया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के बाद फ्री ट्रेड डील नामुमकिन हो जाएगी। जॉनसन ने यह भी कहा कि वो ब्रेग्जिट समर्थक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपने समलैंगिक होने की बात सार्वजनिक तौर पर जाहिर करने वाले एक डॉक्टर तुर्कमेनिस्तान से गायब हो गए हैं। एलजीबीटी एक्टिविस्ट ने तुर्कमेनिस्तान के अधिकारियों से पूछा है कि क्या उन्होंने डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के सदस्यों का कहना है कि वो डॉक्टर की सुरक्षा और सलामती को लेकर डरे हुए हैं। इस डॉक्टर ने रेडियो लिबर्टी की वेबसाइट पर प्रकाशित हुए एक विस्तृत लेख में अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बात की थी। ब्रिटेन की पुलिस का कहना है कि रेफ्रिजरेटर ट्रेलर में मिले सभी 39 शव वियतनामी नागरिकों के हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी इस समय लाइव। मेरा नाम है संदीप सोनी। भारत की राजधानी दिल्ली और आसपास का इलाका इस वक्त भयंकर प्रदूषण की चपेट में है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल ने कल दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करते हुए 5 नवंबर तक सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण यानी EPCA ने दिल्ली के प्रदूषण को बेहद गंभीर श्रेणी का माना है। ज्यादा जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र।
क्रिकेट सीरीज शुरू होने से पहले बांग्लादेश की क्रिकेट टीम कल जब दिल्ली में अभ्यास कर रही थी तो खिलाड़ियों को पहचानना मुश्किल था क्योंकि सबके चेहरे पर प्रदूषण से बचाने वाले मास्क बंधे थे। पूरी दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद की हालत प्रदूषण से पस्त है। लोग घरों से मास्क पहनकर निकल रहे हैं, इसके बावजूद खांसी, सीने और आंखों में जलन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं।
सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन सा होने लगता है।
घर में तो अंदर तो सही स्थिति रहते हैं, लेकिन बाहर आपके कहते बम पटाखे नहीं चलेंगे, दुनिया भर के बम पटाखे चले उससे पोल्यूशन कितना हुआ आपकी बात। आंखों में भी ऐसे होता जैसे मिट्टी गिर गई, धूल मिट्टी रड़कती है आंखें बहुत।
2-4 घंटे के बाद तो पता चलता है कि यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रही है, काफी हो रही है, लेकिन मजबूरी आदमी क्या करे, चलना ही पड़ता है।
फेफड़ों के कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार बताते हैं कि ये हालात इंसानी सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं।
जब इस लेवल के टॉक्सिन्स को लोग एक्सपोज होते हैं तो उनको आंख में जलन होने लगती है, आंख से पानी निकलना, आंख को रेड हो जाना, नोज में बर्निंग होना, थ्रोट में इरिटेशन होना। जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये समय बहुत खराब है।
प्रदूषण को काबू करने की प्रशासन की कोशिशें अब तक नाकाफी रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 4 तारीख से शुरू हो रही ऑड इवन योजना की नोटिफिकेशन जारी हो गई है, साथ ही सभी स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद रखने की घोषणा की गई है।
आसपास के राज्यों से जो फसलें जलने का धुआं दिल्ली आ रहा है, इसकी वजह से पूरे आसमान के ऊपर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार ने लोगों को थोड़ी सी राहत पहुंचाने के लिए मास्क बंटवा रहे हैं हम लोग बच्चों के थ्रू। दोनों प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के बच्चों को एक एक पैकेट दिया जा रहा है, हर बच्चे को, उसमें 2-2 मास्क हैं। मैं समझता हूं कि ये कम है क्योंकि 50 लाख टोटल मास्क हम प्रोक्योर कर पाए इस बार, उससे ज्यादा अवेलेबल ही नहीं थे मार्केट में।
बीती रात दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2 दिन पहले ही दिल्ली में बीते 3 साल के मुकाबले सबसे साफ दीपावली का दावा करते हुए लोगों को SMS भेजकर शुक्रिया कहा था, लेकिन दीपावली के बाद प्रदूषण और तेजी से बढ़ा है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर दोषारोपण करने का आरोप लगाया है।
प्रदूषण के खिलाफ जो मोदी सरकार ने नीति अपनाई कि 5 राज्यों के लोगों को इकट्ठा बिठाकर उद्योगों में और अन्य गतिविधियों में प्रदूषण कैसे कम हो इसकी चिंता करे, उसका पालन करे, ये करने की जरूरत है। लेकिन ये छोड़कर आपस में दोषारोपण करने लगेंगे तो कच्ची चिट्ठियां तो बहुत खुलेगी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में 5 साल से कम उम्र के 1 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत के लिए प्रदूषण जिम्मेदार था। रिपोर्ट में बताया गया है कि बाहर की हवा में मौजूद PM2.5 के कारण 5 साल तक की उम्र के बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर धूल और गंदगी के सूक्ष्म कण होते हैं जो सांस के जरिए शरीर के अंदर जाते हैं। इसके कारण साल 2016 में भारत में 60,987 बच्चों की जान चली गई। कुलदीप मिश्र, BBC, दिल्ली।
दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान का नाम पाठ्य पुस्तकों से हटाने की मांग की है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इसका समर्थन किया है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि टीपू सुल्तान का नाम हटाने से कर्नाटक के इतिहास के एक बड़े हिस्से में खालीपन पैदा हो जाएगा। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
पिछले कुछ सालों से नवंबर का महीना टीपू सुल्तान के नाम से जुड़ गया है। या तो टीपू जयंती पर विरोध प्रदर्शन होते हैं या किसी न किसी बहाने उनका नाम विवादों में आ जाता है। इस साल कुडगु जिले के एक BJP विधायक अपचो रंजन ने मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा से दरखास्त की है कि टीपू सुल्तान का नाम स्कूल और कॉलेज के टेक्स्ट बुक से निकाल देना चाहिए। उन्हें इस बात पर आपत्ति है कि किताबों में टीपू सुल्तान को एक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से प्रकाशित किया जाता है। इस पर मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने पत्रकारों से कह दिया कि टीपू सुल्तान का नाम निकाल दिया जाएगा। येडियुरप्पा का बयान तब आया जब उनके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने स्पष्टीकरण दिया था कि टेक्स्ट बुक समिति इस पर विचार करेगी। हमारे वरिष्ठ विधायक अपचो रंजन ने एक चिट्ठी लिखी है कि उनके जिले के लोग ये नहीं चाहते कि टेक्स्ट बुक में टीपू सुल्तान का महिमा मंडन किया जाए। हमने उनकी चिट्ठी को समिति को भेजा है और कहा है कि रंजन की सुनवाई करें और सरकार को रिपोर्ट दें। वो रिपोर्ट आने के बाद सरकार कुछ कदम उठाएगी। ये थे सुरेश कुमार के शब्द। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री के बयान के बाद टेक्स्ट बुक समिति के अध्यक्ष भर्गु रामचंद्रप्पा ने अपनी निजी राय व्यक्त की है कि टीपू सुल्तान का नाम किताबों से नहीं निकाला जा सकता है। दरअसल उनकी राय से मिलती जुलती एक बयान में मैसूर विश्वविद्यालय के पूर्व इतिहास के प्रोफेसर एन एस रंगराजू ने बीबीसी को बताया,
इट इज नॉट द मैटर ऑफ अ टेक्स्ट बुक और मैटर ऑफ नॉट द मैटर ऑफ हिस्ट्री।
ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक का सवाल नहीं बल्कि कर्नाटका के इतिहास का सवाल है। अगर आपने इतिहास के साथ न्याय नहीं किया तो कर्नाटका के इतिहास में 40 साल का खालीपन देखने को मिलेगा। ये थे प्रोफेसर एन एस रंगराजू के शब्द। लेकिन कन्नड़ इतिहासकार प्रोफेसर चिदानंद मूर्ति टीपू सुल्तान को अलग नजरे से देखते हैं। उनकी राय बीजेपी विधायक अपचो रंजन जैसी ही है। उन्होंने बीबीसी को बताया, ये तो स्पष्ट है कि उनका नाम कोई भी टेक्स्ट बुक में नहीं रखना चाहिए। अगर उनको तानाशाह कहा जाएगा तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर उनको स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाएगा तो हम उससे सहमत नहीं हैं। कुछ लोग उनको स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं क्योंकि वो अंग्रेजों से लड़े, लेकिन वो इसलिए लड़े ताकि वो अपनी हुकूमत को बचा पाए। ये थे प्रोफेसर चिदानंद मूर्ति के शब्द। कई इतिहासकारों का मानना है कि 21वीं सदी में 18वीं सदी के मूल्यों से किसी के शासन को नहीं देखना चाहिए। दरअसल येडियुरप्पा के पहले मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी के नाम से तारीफ भी लिखित तौर से की थी, लेकिन राजनीति में 10 सालों में कुछ भी बदल जाता है। इमरान कुरैशी, बीबीसी, बेंगलुरु।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधी एक मामले में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने अमेरिका के पक्ष में फैसला सुनाया है। WTO ने माना है कि भारत से अमेरिका में निर्यात होने वाले उत्पादों पर जो सब्सिडी दी जाती है उससे तयशुदा नियमों का उल्लंघन होता है। WTO के इस फैसले को भारत के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस बारे में और जानकारी के लिए कुलदीप मिश्र ने बीबीसी बिजनेस संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि आसान भाषा में WTO के इस फैसले का क्या मतलब है।
देखिए, आसान भाषा में अगर इसको समझना चाहें तो वो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनको कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं WTO की तरफ से। वो कंसेशंस एक्सपोर्ट में दिए जाते हैं ताकि उनको फायदा हो। लेकिन US ने पिछले साल उन्होंने ये बोला कि भारत को अब आप डेवलपिंग कंट्रीज में कैटेगराइज नहीं कर सकते क्योंकि उसका GNP जो है $1,000 पार कर चुका है, तो उसको ये फायदा नहीं मिलना चाहिए। तो इसको लेके वो WTO के डिस्प्यूट पैनल में गए और वहां पे उन्होंने एक ये अर्जी दाखिल करी। अब उसी अर्जी के आधार पे WTO ने कहा है कि हाँ, हम US के फेवर में रूलिंग कर रहे हैं, भारत को ये सब्सिडीज नहीं मिलनी चाहिए जिसपे भारत के एक्सपोर्ट्स पर बहुत भारी असर पड़ेगा।
थोड़ा सा और विस्तार से अगर समझना चाहें भारत के लिए इस फैसले के क्या मायने।
भारत को ये झटका है कि देखिए, ये जो पूरा सेक्टर है, ये आप सेक्टर अगर मान के चलिए, इसमें स्टील आता है, केमिकल्स आता है, टेक्सटाइल्स आते हैं, फार्मास्यूटिकल्स आते हैं। अगर आंकड़ों के जरिए बात करें, $7 बिलियन के करीब जो है ये आंकड़े माने जाते हैं, और ये अगर सब्सिडीज हटा दिए गए तो भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इनकरेजमेंट नहीं मिलेगा कि वो एक्सटर्नल मार्केट की तरफ देखें, कि वो निर्यात करें। तो इसी वजह से वो उसका असर डोमेस्टिक मार्केट में भी पड़ेगा, जिसको लेके काफी इकोनॉमिस्ट जो है चिंतित हैं। अभी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी 5% पे हो गई है, इसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो पड़ेगा एक्सपोर्ट्स पे।
ये कह सकते हैं कि अभी अनुमान लगाना थोड़ा जल्दबाजी भी हो सकती है, लेकिन भारत के सामने विकल्प क्या है।
भारत के सामने जो है दो विकल्प हैं। एक तो ये है कि वो इस पे अपील करे, जैसे हम लोग कोर्ट में कोई फैसला आता है कोर्ट में हम लोग उस पे अपील कर सकते हैं, वही भारत को भी ये एक विकल्प है कि वो अपील कर सकता है। लेकिन मैं एक अर्थशास्त्री से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि इस बार शायद एक टेक्निकलिटी की वजह से भारत बच सकता है। वो क्यों? क्योंकि ये जो एपिलेट पैनल है इसमें 7 मेंबर होने चाहिए। अब इस ट्राइब्यूनल एपिलेट के जो मेंबर्स हैं उनमें से 7 में से 2 लोग रिटायर कर रहे हैं। अब अगर ये लोग रिटायर कर रहे हैं तो इनका जो फैसला है क्या वो फिर भी बाइंडिंग होगा हिंदुस्तान पर? वो तकनीकी चीज के आधार पर हो सकता है भारत को कुछ फायदा मिले, लेकिन चूंकि अभी ये हाल फिलहाल की ही बात है और भारत सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रिएक्शन नहीं आया, ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया, तो ये बोलना बड़ा मुश्किल होगा। ये हम एक्सपर्ट्स के आधार पर कह सकते हैं जो कि वो कह रहे हैं कि हो सकता है इसका फायदा भारत को मिले।
विश्व व्यापार संगठन के फैसले से भारत पर पड़ने वाले संभावित असर के बारे में जानकारी दे रहे थे बीबीसी बिजनेस संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी। और अब आइए एक नजर दिल्ली से छपने वाले आज के अखबारों की सुर्खियों पर। सिंधु तैयार हैं एकदम।
दिल्ली से छपने वाले अखबारों में दिल्ली का प्रदूषण, झारखंड के चुनाव, जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल का भारत दौरा, ये सभी खबरें पहले पन्नों पर दिख रही हैं। और दिल्ली के प्रदूषण की खबर को सभी अखबारों ने काफ़ी प्रमुखता से जगह दी है, अलग अलग हेडिंग के साथ, अलग अलग तस्वीरों के साथ। कहीं क्रिकेटर मास्क लगाए दिख रहे हैं तो कहीं स्कूली बच्चे। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडिंग है इमरजेंसी इन द एयर। अमर उजाला ने लिखा है सांसों पर संकट, खतरनाक हुई हवा। जनसत्ता का शीर्षक है दिल्ली में स्वास्थ्य आपातकाल। और दैनिक जागरण ने लिखा है गैस चैम्बर बना दिल्ली NCR। इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर है पिछले कुछ दिनों से चल रही व्हाट्सएप के जरिए जासूसी की, वो भी अखबारों ने प्रमुखता से छापी है। इंडियन एक्सप्रेस की लीड रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है कि गवर्नमेंट सेज नॉट अलर्टेड ऑन ब्रीच, व्हाट्सएप सेज इट डिड इन मे। इस रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप का कहना है कि उसने मई में ही भारत सरकार को बता दिया था कि कुछ गड़बड़ हो रही है, प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि मई में उसे व्हाट्सएप से जो खबर मिली थी, जो जानकारी मिली थी, उसकी भाषा बहुत ही टेक्निकल थी और उसमें यह साफ नहीं कहा गया था कि भारतीयों की प्राइवेसी के साथ समझौता हो रहा है। ये सारी बातें जो सरकार के पक्ष की हैं अखबार ने सरकारी सूत्र के हवाले से लिखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक स्टोरी है कि आने वाले 10 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऐसे 4 बड़े मामलों पर फैसले सुना सकता है जिससे मौजूदा भारत में बहुत कुछ बदल जाएगा। पहला अयोध्या का राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद, दूसरा केरल के सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर फैसला, रफाल डील मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट मिलने पर, और CJI ऑफिस को, मुख्य न्यायाधीश के ऑफिस को RTE एक्ट के दायरे में लाने का फैसला।
और ये सिंधु ये सब होगा भारत को अगला नया मुख्य न्यायाधीश मिलने से पहले।
बिल्कुल,
बहुत शुक्रिया।
BBC इंडिया बोल।
क्या मोदी सरकार सरदार पटेल की विरासत को हथियाना चाह रही है या फिर उन्हें इतिहास में उच्च स्थान दिलाने का प्रयास है? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर। कार्यक्रम में अपने विचार रखने के लिए इस शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1800-102-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
और अब विवेचना में आज सुनिए, पास रहकर भी कितने दूर हैं भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त TCA राघवन की एक किताब प्रकाशित हुई है, द पीपल नेक्स्ट डोर, द क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशंस विद पाकिस्तान। इसमें उन्होंने पिछले 70 साल में भारत और पाकिस्तान के बदलते रिश्तों का विश्लेषण किया है। आज की विवेचना में रेहान फजल नजर दौड़ा रहे हैं 1947 से 1965 तक भारत पाकिस्तान संबंधों में आए उतार चढ़ाव पर।
जगा के जंग का तूफान जमीन नानक से, उठे हो आग लगाने कबीर के घर में, गुलाम तुम भी थे कल तक, गुलाम हम भी थे, नहा के खून में आई थी फसले आजादी, अभी शगूफों ने खोली नहीं है आंख अपनी, अभी बहार के लब पर हंसी नहीं आई। तुम आओ गुलशन लाहौर से चमन बरदोश, हम आए सुबह बनारस की रोशनी लेकर, हिमालया की हवाओं की ताजगी लेकर, और उसके बाद ये पूछें।
1965 में जब अली सरदार जाफरी ने ये नज्म लिखी थी तब दोनों मुल्कों में इसकी बहुत वाहवाही हुई थी। अगर आज इसे किसी सार्वजनिक मंच से पढ़ा जाए तो शायद बहुत से लोग इसे अप्रासंगिक कहें। भारत और पाकिस्तान के बीच दूरियों की नींव 1947 में दोनों देशों के विभाजन के साथ ही रख दी गई थी। विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक उन्माद का न कोई मजहब था न कोई जात। उन दर्दनाक दिनों में आंख के बदले आंख हत्या के बदले हत्या, बलात्कार के बदले बलात्कार ने दोनों आजाद हुए देशों के संबंधों में ऐसा जहर घोला जिसकी कड़वाहट आज तक कम नहीं हुई है। मशहूर लेखक डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा,
15 अगस्त 1947 को जब लाहौर से आने वाली 10 डाउन एक्सप्रेस अमृतसर के स्टेशन पर आकर रुकी तो स्टेशन मास्टर छेनी सिंह की आंखों के सामने जो दृश्य आया उसे देखकर उन्हें सांप सूंघ गया। हर डिब्बे की सारी खिड़कियां खुली हुई थीं, लेकिन उनमें से किसी के भी बाहर कोई चेहरा झांकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। एक भी दरवाजा नहीं खुला, एक भी आदमी ट्रेन से नीचे नहीं उतरा। छेनी सिंह ने आगे बढ़कर एक झटके के साथ पहले डिब्बे का दरवाजा खोला और एक क्षण में उनकी समझ में आ गया कि उस रात 10 डाउन एक्सप्रेस से अमृतसर में एक भी शरणार्थी क्यों नहीं उतरा था। वो लाशों की गाड़ी थी। उनके सामने डिब्बे के फर्श पर इंसानी जिस्मों का ढेर लगा हुआ था। किसी का गला कटा हुआ था, किसी की खोपड़ी चकनाचूर थी, किसी की आंतें बाहर निकल आई थीं। हर डिब्बे में यही दृश्य था। अंतिम डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते उन्हें मतली होने लगी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर एक बार फिर ट्रेन पर नजर डाली। हत्यारों ने अपना परिचय देने के लिए अंतिम डिब्बे पर मोटे मोटे सफेद अक्षरों में लिखा था, ये पटेल और नेहरू को हमारी तरफ से आजादी का तोहफा है।
शायद इसी को देखकर फैज अहमद फैज ने अपनी वो मशहूर नज्म पढ़ी,
ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, फलक के दश्त में तारों की।
पश्चिमी भारत में एक रियासत थी जूनागढ़, जिसके नवाब मुसलमान थे, लेकिन 90% से भी अधिक आबादी हिंदू थी। नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया। द पीपल्स नेक्स्ट डोर, द क्यूरियस हिस्ट्री ऑफ इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान के लेखक और पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे TCA राघवन बताते हैं,
जूनागढ़ में नवाब मुसलमान थे पर 99% जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी। ये स्वाभाविक था कि जो मेन पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही रहना चाहते थे। जो नवाब थे, नवाब ऑफ जूनागढ़, वो थोड़े सेंट्रिक से कैरेक्टर थे और उनको ये लगा कि नहीं, मैं पाकिस्तान से ज्वाइन होना चाहता हूँ, पर किस तरह ज्वाइन होते ये क्लियर नहीं था क्योंकि उसका कोई भी हिस्सा पाकिस्तान से लगा हुआ नहीं था। पर अंत में ये एक्सेशन एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके खिलाफ जूनागढ़ में ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला कि हम क्यों पाकिस्तान का हिस्सा बने। नवाब को पता लगा कि भारतीय सेना या भारतीय पुलिस अंदर आने वाली है, तभी वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। वो थोड़े इसेंट्रिक से कैरेक्टर थे। वो अपने साथ में उनके जो परिवार वाले जो गए, पर साथ में वो 100 कुत्ते भी साथ ले गए। और वो जब प्लेन का जब दरवाज़ा खुला, वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर तैयार थी और मिनिस्टर्स और सीनियर ऑफिशियल्स उनको रिसीव करने आए थे, पर जब प्लेन का दरवाजा खुला तो सबसे पहले बाहर कुत्ते भाग के निकले क्योंकि वो भी 2 घंटे से बंद थे।
जूनागढ़ के ठीक उलट कश्मीर में स्थिति दूसरी थी। वहां के महाराजा हिंदू थे जबकि घाटी में रहने वाले अधिकतर लोग मुसलमान थे।
पर कश्मीर में सबसे बड़ा जो फर्क था, कश्मीर के अपना एक पॉलिटिकल प्रोसेस था और उसमें शेख अब्दुल्ला बहुत ही महत्वपूर्ण थे। शेख अब्दुल्ला की सोच ये थी कि मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि मुझे एक खुद अपना ऑटोनोमस स्टेटस चाहिए, और दूसरा उनकी खुद भी सोच सेकुलरिज्म की तरफ थी। अब महाराजा क्या सोचते थे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, पर यह जरूर है कि उन्होंने एकदम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया। इसी बीच में पाकिस्तान से कबायली और उसमें पाकिस्तान फौज के एलिमेंट्स भी शामिल थे काफ़ी तादाद में, उनका एक इन्वेजन शुरू हुआ। और जब ये कबायली श्रीनगर के पास तक पहुँचे तब उसी मौके पर जो महाराजा थे जम्मू और कश्मीर के, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया ज्वाइन करने के लिए, और उसी से भारत पाक का पहला युद्ध शुरू हुआ।
भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ा विवाद तब पैदा हुआ जब ये तय किया गया कि रिजर्व बैंक में जमा पैसे में से 75 करोड़ रुपए भारत पाकिस्तान को देगा, लेकिन भारत ने 20 करोड़ रुपए देने के बाद बाकी 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया।
जो डिवीजन एग्री हुआ था वो तो भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के आपस में बीच में मंजूर हो गया था, पर बीच में क्योंकि कश्मीर में युद्ध शुरू हुआ तो नई दिल्ली में तब काफ़ी लोगों का ये कहना था, जब आप लड़ाई कर रहे हैं, जब आपके जवान वहाँ पर मारे जा रहे हैं, तो ऐसे मौके में आप फंड्स कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, और जब आप जानते हुए कि इन फंड्स का काफ़ी बड़ा हिस्सा आर्म्स के लिए या एम्युनिशन के लिए या मिलिट्री स्टोर्स के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इस वजह से भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि नहीं, ये फंड्स हम रिलीज़ नहीं करेंगे जब तक ये युद्ध चलता रहेगा। इसके खिलाफ महात्मा गांधी एक फास्ट पर गए कि नहीं, ये फंड्स रिलीज़ करना आपकी मॉरल ऑब्लिगेशन है और आपको ये फंड्स रिलीज़ करने चाहिए। और क्योंकि महात्मा गांधी ने फास्ट किया था, फास्ट अनटू डेथ, तो भारत सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा।
50 के दशक की शुरुआत में 82 हत्याएं करने वाले सौराष्ट्र के एक डाकू भूपत को जब भारतीय पुलिस ने खदेड़ा तो वो सीमा पार कर पाकिस्तान चला गया और वहीं बस गया। बाद में 1960 में इस पर फिल्म बनी जिसमें तेलुगु देशम के नेता एनटी रामाराव ने भूपत डाकू की भूमिका निभाई।
इसके बारे में मैंने एक बार एक फाइल देखी थी पुरानी, डीक्लासिफिकेशन के लिए आई थी, मतलब इस फाइल को नेशनल आर्काइव्स भेज दिया जाए। किस्सा इस तरह का है कि ये डाकू था और इसके पीछे पार्टीशन के पहले भी केसेस थे और 1947 के बाद इसकी भी एक्टिविटीज कुछ बढ़ गई और आखिर में जब इसके पास और कोई चारा रहा नहीं तो ये पाकिस्तान भाग गया। वहाँ पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। जब जेल के टर्म खत्म होने लगा तब सवाल उठा कि भूपत डाकू के साथ क्या किया जाए। पाकिस्तान में कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, हम इसको वापस कैसे कर सकते हैं। अब उसका टेक्निकल रीज़न ये दिया गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, पर इसमें भूपत ने भी शायद किसी काबिल वकील को रखा और उसने उस पूरे किस्से को एक अलग ट्विस्ट दिया और ये कहा कि आप ये कहो कि मैं एक फ्रीडम फाइटर था और सौराष्ट्र के स्टेट्स पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहते थे पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फोर्स यूज़ करके उनको इंडिया का हिस्सा बनाया और आप उन स्टेट्स के की तरफ से एक फ्रीडम फाइटर का रोल निभा रहे थे और यही उसका डिफेंस रहा पाकिस्तान में। उसके बाद वो हिंदुस्तान तो नहीं लौटाया गया, पाकिस्तान में ही रहा, वो कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को मुसलमान कहने लगा और शायद 2002 या 2003 में उसकी मौत हुई।
1960 में जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान गए, उन्होंने सिंधु जल समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन तब तक भारत पाकिस्तान संबंधों में गिरावट का दौर शुरू हो चुका था। 1965 में दोनों देश युद्ध के मोर्चे पर थे। इस लड़ाई में ईरान और तुर्की के साथ इंडोनेशिया खुले तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में आया, जबकि मलेशिया ने भारत का साथ दिया।
जब भारत पाकिस्तान जंग का मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा तो मलेशिया के जो एम्बेसडर थे यूएन में, उन्होंने पाकिस्तान की बहुत ही सख्त क्रिटिसिज्म किया कि ये जंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जंग की जिम्मेवारी आपकी है क्योंकि आपने ही सबसे पहले घुसपैठिए भेजे कश्मीर में और इसी से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान ने इतनी कड़ा ऑब्जेक्शन था इसके बारे में कि उन्होंने मलेशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए और उसी टाइम इंडोनेशिया में भारत के खिलाफ बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस थे और हमारे जो एम्बेसी था उसके ऊपर लोगों ने बाद जाके डेमोन्स्ट्रेशंस भी किए।
दिलचस्प बात यह है कि आज वही मलेशिया कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये बताता है कि विदेश नीति में कोई चीज हमेशा स्थिर नहीं होती। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
चलते चलते मुख्य समाचार पुनः सिंधुवासिनी से।
बीबीसी समाचार। भारत की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। सभी स्कूल 5 नवंबर तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और स्कूली बच्चों के लिए लाखों मास्क बांटे गए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीका और चीन में एक ट्रेड डील होने वाली है। पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील का जिक्र करते हुए कहा था कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। इराक में हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर राजधानी बगदाद के बीचों बीच इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इराक की जनता प्रधानमंत्री अब्दुल मेहदी के इस्तीफे की मांग कर रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आलोचनाओं के बीच अपनी ब्रेग्जिट डील का बचाव करना जारी रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो ब्रेग्जिट समर्थक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपने समलैंगिक होने की बात को सार्वजनिक तौर पर जाहिर करने वाले तुर्कमेनिस्तान के एक डॉक्टर को गायब कर दिया गया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। अगला प्रसारण दिन भर शाम 7:30 बजे आज होगा। बीबीसी इंडिया बोल रहेगा। आपकी फोन कॉल्स का इंतजार। संदीप सोनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।